हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 15, 16, 17 एंड 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत् श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता, श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 15। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदत्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह कीरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदत्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह कीरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदत्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह कीरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदत्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह कीरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदत्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह कीरीटमाली। शब्द का अर्थ, माता शिशुना निधनम सुतानाम, माता अर्थात माँ, शिशुनाम अबोध, निधनम हत्या, सुतानाम अर्थात पुत्रों की, निशम्य घोरम, निशम्य अर्थात सुनकर, घोरम अर्थात निःसत्ता पूर्वक, परितप्यमानम पश्चाताप करती हुई, तदा उस समय अरुद्धत रोने लगी, वाष्पकल आकुल आक्षी अर्थात आंखों से आंसू बहाकर, ताम सांत्वयन्ना हकीरी ट्रमाली, तामन उसको सांत्वयन अर्थात धीरज बनाते हुए आह कहा, क्रीटमाली अर्थात अर्जुन ने। अनुवाद, पांडव के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंखों में आंसू भरकर शोक से रोने लगी। इस महान क्षति में उसे धारस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले, टेक्स्ट नंबर 16। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्धम्म बन्धो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तै विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्य सिद्धार्थपुत्रा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्धम्म बन्धु शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैः विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्य सिद्धार्थपुत्रा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्म बन्धु शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैः विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्य सिद्धार्थपुत्रा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्म बन्धु शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैः विशिखैरुपाहरे दृष्ट्वा गम्य यस्नास्य सिद्धार्थ पुत्रा। अर्थात शब्दों का अर्थ, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे, तदा उस समय शुचि शोक के आंसू ते तुम्हारे प्रमृजाय अर्थात पहुंच दूंगा भद्रे, हे भद्रे स्त्री, यत जब ब्रह्म बंधु अर्थात पतित ब्राह्मण का सिर आतताई का गांडीव मुक्तर, गांडीव नामक धनुष से छोड़े गए विशिखर अर्थात बाणों से उपाहरे तुम्हें बेंट दूंगा। त्वा आक्रम्य, त्वा तुम स्वयं आक्रम्य उस पर चढ़कर, यत जो स्नास्यसी स्नान करोगी दग्ध पुत्रा, पुत्र को जलाने के बाद। अनुवाद, हे देवी, जब मैं गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर छिन्न करके तुम्हें बेंट दूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्र के शिरों को जलाने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शत्रु घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अकस्मात घातक अस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेत पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई, चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का शिर काटने की प्रतिज्ञा की तो वह जानता था कि वह अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस कथा कथित ब्राह्मण ने कसाई का कार्य किया था, अतः वह आतताई है और ऐसे धूर्त ब्राह्मण पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। भगवान श्री कृष्ण के इस कथा का उदय करने से पहले सूत गोस्वामी हमें महाभारत के विषय में, महाभारत युद्ध के उपरांत जो दृश्य है उसे दिखा रहे हैं कि जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ और उसके अंत में जब दुर्योधन अत्यंत ही घायल हो गया था और अश्वत्थामा उसको सांत्वना देने के लिए, उसके हृदय को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या सोचा, धतु प्रियं द्रोणीति स्म पश्यन्, अर्थात उसने ऐसा सोचा कृष्णा सुतानाम सपताम शिरांसि, के कृष्णा के पुत्रों के सिर को काट कर मैं शायद दुर्योधन का प्रिय कर सकूंगा। भर्तु प्रियम, भर्तु अर्थात क्योंकि उसने मेरा पालन किया है, वो मेरा स्वामी है, तो मैं उसको मरते समय कुछ हृदय में संतोष पैदा करूंगा कि चलो ठीक है, वो सोचेगा भले हार गया भले मर गया लेकिन सामने वाली जो दल है उसको भी क्षति पहुंचा, के ऐसा नहीं कि वो मजे कर रहे हैं और मैं मर गया हूँ, उनको भी सबको खत्म किया उसके बाद मैं मरा हूं तो उसको अच्छा लगेगा। परंतु अब उसका प्रिय नहीं हुआ ये अलग बात है। उपाहरत विप्रियमेव तस्य, ऐसा करके उसने ऐसा उसको उपहार दिया उनके सिर का, लेकिन उससे प्रिय होने के बदले में क्या हो गया, विप्रियमेव तस्य, विप्रिय हो गया क्योंकि वो जानता था कि इस कार्य की लोक में बहुत निंदा होगी और मेरी मृत्यु के बाद भी लोक में मेरी निंदा होगी और सब लोग में मुझे नीच सोचेंगे कि कैसा नीच व्यक्ति था जिसने मरते मरते भी उनको है ना उनके बच्चों को मार डाला पांडवों की। तो यहाँ पर इतना करने के बाद जब वो तो इतनी रात थी, दूसरे दिन सवेरे प्रातः काल जब माता द्रौपदी को पता चला, जब द्रौपदी माता ने सुना कि मेरे सारे पुत्र मारे गए हैं, तो वो विलाप करने लगी। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी ने माता शब्द लिखा, माता शिशुनाम निधनम सुतानाम। वो माता जिसके सारे पुत्र मारे गए थे, सोते हुए पुत्रों की हत्या की गई थी। वास्तव में द्रौपदी जो थी वो याज्ञशनी, यानी कि वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे थे, मतलब वो बहुत बड़ी एक राज्य की राजरानी थी, लेकिन अब उसके जीवन में कितने कष्ट। ये जब जुवा में सारे द्युत किरणा में सारे पांडव हार गए थे, अपनी पत्नी को भी हरा दिया था, तो दुशासन बालों से पकड़कर उसको भरी सभा में लेकर आया, उसको नग्न करने की चेष्टा की गई। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, लेकिन उसके बाद 13 वर्ष का वनवास और वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, इन 13 वर्षों में द्रौपदी ने बहुत बहुत कष्ट झेले थे, बहुत बहुत मुश्किलें बहुत बहुत इनके ऊपर आई थी। और द्रौपदी वो इस मतलब वो राजकुमारी थी, वो योग्य नहीं थी इन सब कष्टों के, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे कष्ट झेले। और अज्ञातवास में तो वो महारानी द्रौपदी, बड़े बड़े राजा भी जिनके लिए उपहार लेकर आते थे, और क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी, लेकिन उस समय उसे एक दासी का कार्य करना पड़ा। एक साधारण भी अगर कोई लड़की होती है या कोई साधारण घर गृहस्थ महिला होती है, उसे भी अगर किसी की दासी बनना पड़ता है तो वो झेल नहीं सकती। लेकिन द्रौपदी जो कि याज्ञ सहनी थी, द्रौपद महाराज की पुत्री थी, उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट था। और खैर वो द्रौपदी, उसने अपने जीवन में इतने सारे कष्ट झेले तो ठीक, लेकिन अज्ञातवास में तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उनको रेप करने की चेष्टा की गई, कीचक जो कि विराट राज की पत्नी का भाई था, उसने द्रौपदी को बहुत तंग किया था। खैर वो तो भीम के हाथों मारा गया, परंतु द्रौपदी बहुत दुखी थी, बहुत बहुत सारे दुख देखे थे उसने। और जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में भी बहुत सारे अपनों की मृत्यु उसने देखी, और उसके उपरांत भी उसे ऐसा लगा जब युद्ध समाप्त हो गया तो वो संतुष्ट थी कि बहुत दुख देखने के बाद भी मेरे पांचों पति और मेरे पांचों पुत्र तो अभी तक जीवित हैं, मतलब सारे पत्तियों का एक एक अंश मेरे पास है, तो इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट थी। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं माता शिशु नाम। वास्तव में भक्तों, वो पांचों पुत्र जो द्रौपदी के थे अभी बिल्कुल शिशु थे, छोटे थे, अभी 15-16 साल की उनकी आयु थी। निधनम, उनकी हत्या कर दी गई। जब निशम्य घोरम परितप्य मानम, जब उसने ये खबर सुनी, निशम्य अर्थात उसने जब सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। घोरम परितप्य मानम, बहुत ज्यादा दुख हुआ उसको, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी। घोरम का मतलब ये कि उसने देखा उसके सारे पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, मतलब मस्तक विहीन दर, उनका मस्तक उनके पास नहीं था और सारे पुत्रों के सर कटे हुए, केवल धड़ पड़े हुए, ये देखकर वो कितना दुखी हुई। द्रौपदी रो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। वास्तव में कोई माता ही इस दुख को समझ सकती है, इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं माता शिशुना, केवल माता ही जानती है। उसके बच्चे को यदि थोड़ी सी उंगली में भी चोट आ जाए ना, अगर उसको उंगली का नाखून जो कि वापस आ जाता है वो भी यदि कट जाए ना, तो भी माता को बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ पर वो माता जिसके 5-5 पुत्रों के सिर कटे हुए हैं, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा, इतना अपार दुख। निशम्य घोरम परितप्यमाना, वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। और तदा रुदद्वाश पकलाकुलाक्षी, यानी कि उसके आंखों से आंसू समाप्त नहीं हो रहे थे, किसी के समझाने से वो समझ ही नहीं रही थी, कैसे समझती। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो किसी तरह से अपने मन को समझा सकती। वो माँ थी और माँ ने जब अपने पांचों पुत्रों के शव देखे, मस्तकविहीन शव, तो उस वो रो जा रही थी। वो सारे पांडव भी रो रहे थे ये दृश्य देखकर, परंतु द्रौपदी बहुत ज्यादा दुखी थी। और उसके बाद ताम सांत्वयन्नाह कीरीटमाली, कीरीटमाली कहते हैं अर्जुन को। सारे पांडव द्रौपदी को सांत्वना दे रहे थे, वहां कृष्ण भी थे, वहां पर दूसरे पांडव भी थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। तो फिर अर्जुन द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे और वो अपना एक कर्तव्य, क्योंकि द्रौपदी को जीत कर लाए थे, तो उनका कर्तव्य था कि वो किसी तरह से अपनी पत्नी को शांत करते। तो उनको शांत करने के लिए अर्जुन ने ऐसा कहा, किरीटमाली, उनको सांत्वना देने के लिए कहा। क्या कहा? तदा शुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे। हे प्रिय, भद्रे कहते हैं प्रिय, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितनी अपार पीड़ा है, मैं जानता हूं कि तुम कितना दुखी हो। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं तुम्हें सांत्वना दूं, लेकिन फिर भी तदा शुचस्ते मैं तुम्हारे इन शोक के आंसुओं को प्रमृजामि, मैं तब पहुंचूंगा। कब पहुंचूंगा? जब यद ब्रह्म बंधु शिर आतताय, जब उस आतताय का मस्तक लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। उस आतताय, यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने आतताय के विषय में बताया है, और आतताय शब्द भगवद गीता में भी यूज हुआ है। अब आतताय इतने प्रकार के होते हैं, एक वो जो शत्रु के घर में आग लगा देते हैं। लड़ाई करो एक अलग बात होती है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, सामने से वार करो, लेकिन शत्रु घर में हो, उसके घर में यदि आग लगा दी जाए, या किसी तरह से उसे विष खिला दे भोजन में डाल के, या फिर किसी तरीके से विष खिला के उसे मारे, या अकस्मात घातक अस्त्रों से प्रहार करे। अकस्मात मतलब ऐसे कोई चुनौती नहीं दी गई, कोई शंख नहीं बजाया गया, कोई युद्ध अभी स्टार्ट नहीं हुआ और डायरेक्ट से चलते फिरते, या फिर ऐसी अचानक से उसको घातक हथियार से मार डाले। संपत्ति लूटने वाला, या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार करने वाला, या किसी की पत्नी को फंसाने वाला, वह आतताई है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अब ये कार्य करने वाला आतताई होता है, फिर वो भले तथाकथित ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का पुत्र हो, जब ऐसा कोई कार्य करता है ना, तो उसका सर काट कर अगर आप मार देते हो, तो फिर उसमें कोई अपराध नहीं लगता है। ऐसे दूर ब्रह्मा पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं लगता। तो फिर यहाँ पर अर्जुन भी कह रहे हैं द्रौपदी को, यद ब्रह्म बंधु शिर आतताय, मैं उस ब्रह्म बंधु का, अश्वत्थामा का सिर काट कर लेकर आऊंगा, और उसके बाद गांडीव मुक्ताय विशिखाय रूपाहर, अपने इस गांडीव के बल पर। ये गांडीव धनुष अर्जुन का इतना विख्यात है कि पूरी अभी इतनी बड़ी युद्ध की उसने 18 दिन तक करोड़ों सेनापतियों को मारा, करोड़ों वीरों को मारा, लेकिन वो गांडीव ज्यों का त्यों उसके पास बना रहा। तो उसने उसी गांडीव को दिखाते हुए कहा कि इस गांडीव के द्वारा मैं उसको लेकर आऊंगा, अश्वत्थामा को, और तुम क्या करना, त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्ध पुत्र, तुम्हारे इस पुत्रों का, दग्ध पुत्र मतलब पुत्रों का अग्निदाह संस्कार। जैसे हमारे सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अग्नि संस्कार किया जाता है, उसके बाद स्नान किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्ध पुत्र, तुम ऐसा करना, इन पुत्रों की अग्निदाह करने के बाद, चिता को अग्नि लगाने के बाद, उसके सिर पर खड़ी होकर फिर तुम स्नान करना। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे आंसुओं को मैं तब पहुंचूंगा। वास्तव में अर्जुन का बस एक ही उस समय केवल यही चाह रहा था, क्योंकि अर्जुन भी एक तरह से विलाप कर रहा था। द्रौपदी विलाप कर रही थी, वो याद कर रही थी अपने पुत्रों के विषय में कि मैंने तो क्या क्या सोचा था कि तुम्हारा विवाह करवाऊंगी, तुम कितना सब कुछ मैंने सोचा था कि जब से तुम लोग पैदा हुए हो कोई सुख नहीं देखा, अब हम राज्य करेंगे, हर खुशी मतलब प्रेम से कभी रहे नहीं हम, और आज जब सुख के दिन आए तो तुम लोग चले गए, तो इस तरह के विलाप कर रही थी, तो उसके विलापों को सुनकर उसको धीरज देने के लिए, अर्जुन भी समझा रहा था द्रौपदी को एक तरह से, वो भी विलाप ही कर रहा था कि मैं जानता हूँ, जैसे घर यहाँ पर भी संसार में ऐसा होता है ना, अगर किसी कोई किसी को मार डालता है तो फिर हम बोलते हैं ना इसको, मैं भी जब तक इसको मार डालूंगा तभी ही मुझे सुख आएगा, तो ऐसे ही खाली उसको बता रहा था कि उसने तुम्हारे पुत्रों के सिर को काटा है ना, मैं भी उसका सिर लेकर आऊंगा, फिर तुम उसके सिर पे खड़ी होकर स्नान करना अपने पुत्रों की अग्निदाह करने के बाद। आगे सूत गोस्वामी इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं, इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पय, इति प्रियाम इस प्रकार अपनी प्रिया द्रौपदी को वल्गु मीठे विचित्र जल्पय, विचित्र मतलब तरह तरह के जल्पय यानी कथाओं से, यहाँ पर यह बात सिद्ध करता है, ये जो जलपय शब्द है वो सिद्ध कर रहा है कि अर्जुन बस एक प्रकार की बात बक रहे थे, जल्पना कर रहे थे, केवल क्या चाहते थे कि किसी प्रकार से मैं अपनी द्रौपदी पत्नी को सांत्वना दे सकूं। वो उन्होंने फैक्ट नहीं कहा, वास्तव में भक्तों अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि अश्वत्थामा उसके गुरु के पुत्र है, अर्जुन एक क्षण के लिए भी ये नहीं भूले थे कि अश्वत्थामा उनके अपने गुरु के पुत्र हैं, वो अपने गुरु के पुत्र को कभी नहीं मार सकते थे। बस ये जो शोक की दशा में थी ना द्रौपदी, उसको सांत्वना देने के लिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पय ससांत्वयी च्युत सूत, अर्थात सांत्वयी च्युत मित्र सूत, सांत्वना दे रहे थे कौन, अच्युत, अच्युत के मित्र यानी जिनके मित्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और उसने क्या किया, अन्वाद्रवधन शित उग्र धन्वा कपि द्वजो गुरु पुत्रम रथेना, शब्दों का अर्थ देखिए, इति इस तरह प्रियम प्रियतमा को वल्गु मीठे विचित्र तरह तरह के जल पहना कथनों द्वारा सह वह सांत्वयित्वा सांत्वना देकर प्रसन्न करके अच्युत मित्र सूत्र, अर्जुन जिसका मार्गदर्शन अच्युत भगवान मित्र तथा सारथी के रूप में करते थे, अन्वाद्रवत अर्थात पीछा किया, दिशंत यानी कवच द्वारा सुरक्षित, उग्र धनवा भयानक अस्त्रों से सज्जित कपी ध्वजा अर्जुन जिसका रथ के ऊपर हनुमान जी का लगा हुआ था ना चिन्ह कपी ध्वजा, गुरु पुत्रम अर्थात अपने गुरु के पुत्र को रथेना रथ पर आरूढ़ होकर, अनुवाद इस प्रकार मित्र तथा सारथी रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपने प्रियतमा को मीठे कथनों से संतुष्ट किया, जब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्र से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अब उसने क्या किया, अब पत्नी को पहले बोला कि मैं लेकर आता हूँ उसका सर और तुम उसके ऊपर खड़ी होकर स्नान करना जब अपने पुत्रों का अग्नि दाह कर दो, इतना कहने के बाद वो ये सब कहे इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पय, इतना कहने के बाद वो जो इस अलग अलग तरीकों से उसको है ना सांत्वना देने के बाद सांत्वयी त्वाच्युत मित्र सूत, वो जो अच्युत के मित्र हैं यानी कि जो हर मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सारथी भी हैं, अन्वाद्रवदंशित उग्र धनवा, उसने क्या किया अपना गांडीव धनुष उठाया जो बहुत भयंकर था, और दंशित यानी उसने अपना कवच भी धारण किया, गांडीव धनुष और कवच भी धारण किया, यहाँ पर ये बताने का कारण क्या है कि सुत गोस्वामी बताना चाहते हैं कि ये वो धनुष और कवच है जिनके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया था और आज अश्वत्थामा की बारी थी। और कपिध्वज जहाँ पर हनुमान जी होते हैं साथ देते हैं जिसका भी तो अवश्य वो विजयी होते हैं। कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेना, गुरुपुत्रम यहाँ पर एक सुंदर शब्द दिया सुत गोस्वामी ने, यानी कि अर्जुन ये जानता था कि वे मेरा गुरु का पुत्र है, मुझे उसको मारना नहीं पड़ेगा, मारना नहीं है मुझे, बस इसीलिए हर चीज को बता रहे हैं। यहाँ पर देखो जल्प है, यानी कि उन्होंने बस खाली बोल दिया था, वो भले ही पीछे जा रहा था लेकिन उस शोक की अवस्था में भी वो जानता था कि ये मेरा गुरु पुत्र है, कभी भूल नहीं रहा था इस बात को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन कभी नहीं भूलते। यहाँ से यह बात भी सिद्ध होती है कि भक्त के ऊपर भले कितनी ही विपत्ति आ जाए, बड़े बड़े संकट भक्तों के ऊपर यदि आ जाए तो भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूलते कि मेरा कर्तव्य है कि मैं कैसे वैष्णवों के साथ मुझे रहना। वैष्णव चाहे कितनी बड़ी गलती करे, वो गलती कर रहा है, वो आतताय भी हो जाएगा ना, तो भी एक वैष्णव जो है वो उसे पता होता है कि मुझे उसका सम्मान करना है, मुझे उसका किसी भी, हालांकि उसके पुत्रों को मार दिया लेकिन यहाँ पर फिर भी सूत गोस्वामी अर्जुन के भाव को व्यक्त करते हुए गुरु पुत्र रथ है ना, कि गुरु पुत्र के रथ रथ के ऊपर सवार होकर गुरु पुत्र के पीछे जा रहा था, यानी कि वो याद है उसे, ऐसा नहीं लिखा कि वो आतताय के पीछे जा। अभी द्रौपदी को उसने कह दिया, द्रौपदी को समझाया, समझाने के लिए ऐसा बोल दिया, लेकिन मन में उसके यही था कि वो उसका गुरु पुत्र है। आगे श्लोक नंबर 18। तमा पतंतम सविलक्ष दूरात् कुमारहो द्विग्नमाना रथेना पराद्रवत् प्राण परीप्सुरुव्राम यावत् कमं रुद्रभया तमापतन्तं सविलक्ष दूरात् कुमारहो द्विग्नमाना रथेना पराद्रवत्ताण परीप्सुरुर्व्यां यावत् कमं रुद्रभया द्यथार्क तमापतन्तं सविलक्ष दूरात् कुमारहो द्विग्नमाना रथेना परात्रवत् प्राण परीसुरुर्व्यां यावत् कमं रुद्रभया द्यथार्कम्। शब्दों का अर्थ, तम आपत तम सविलक्ष दूरा, तम मतलब उसको, आपतंतम अर्थात क्रोध से आते हुए, स उसने विलक्ष देखकर दूरा दूर से ही, कुमारहा राजकुमारों का वध करने वाला, उद्विग्न मना मन में विचलित हो गया, रथे न रथ पर परावरत दौड़ पड़ा, प्राण की प्राण यानी अपने प्राणों की परिसु अर्थात रक्षा करने के लिए, और वह व्याम, और व्याम का मतलब होता है तेज गति से, यावत गमम अर्थात जो ही भागा, रुद्र भयात शिव के भय से, यथा जिस प्रकार, क यानी ब्रह्मा, अर्क यानी सूर्य। अनुवाद, राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह तेज भागा जिस तरह शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य, पाठ के अनुसार कह या अर्क के दो संदर्भ पुराणों में मिलते हैं। क का अर्थ ब्रह्मा है जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया जिससे शिव जी कुपित हुए थे और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण किया था। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भागे थे। जहाँ तक अर का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युमाली नाम का एक असुर था, जिसके पास चमचमाता सुनहला वायुयान था, जो सूर्य के पीछे तक यात्रा कर सकता था और उसके प्रकाश से रात्रि जाती थी। इससे सूर्य देव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला दिया, जिससे शिव जी कुपित हुए और उन्होंने सूर्य देव पर आक्रमण किया था। सूर्य देव भाग गए और अंत में काशी यानी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध है। श्री प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर बता रहे हैं, तमा पतंतम स विलक्ष दूरा। तमा पतंतम, बहुत ज्यादा गुस्से में था अर्जुन, और जैसे ही विलक्ष यानी देखा, दूरा यानी दूर से ही, अश्वत्थामा बहुत दूर थे, लेकिन जब अर्जुन इतना ज्यादा क्रोधित होकर अपना धनुष और अपना वो पहनते ना कवच, वो पहनकर जब दौड़ रहा था, अपने रथ के ऊपर सवार होकर उसकी आ रहा था, उस टाइम पर कुमार हो द्विघ्न मना रथे ना, कुमार हो यानी जिसने कुमारों को मारा था यानी अश्वत्थामा, उद्विग्न मना, बहुत ज्यादा हृदय के मन के अंदर इतना ज्यादा विचलित हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर वो क्या हुआ, वो भी रथ के ऊपर बैठ गया अपने। अब उसने सोचा, अभी मेरे पास और कोई भी विकल्प नहीं है, मुझे भी भागना पड़ेगा, वो मेरे पीछे आ रहा है, मुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं अर्जुन, इसलिए वो रथ के ऊपर बैठा। तो यहाँ पर यह एक प्रश्न उठता है कि जब अर्जुन उसके साथ युद्ध करने के लिए आ रहा था तो भाग कैसे सकता है, उसको उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, उसको अपनी अपकीर्ति की है ना फिक्र नहीं है कि मैं यदि भाग जाऊंगा, जैसे अर्जुन को भगवान ने कैसे बताया था कि अगर तुम युद्ध से भाग गए तो तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होगी। तो अश्वत्थामा भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, तो उस समय उसको भागेगा तो अपकीर्ति तो होगी, लेकिन यहाँ पर सुत गोस्वामी बता रहे हैं पराद्रवत प्राण परीक्षसु, अर्थात उस टाइम पर उसको सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी, कैसे मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं। प्राण परीक्षु का मतलब होता है अपने प्राणों की रक्षा, अपनी कीर्ति की रक्षा से ज्यादा उस समय उसको अपने प्राणों की रक्षा करना इम्पोर्टेंट लग रहा था। तो फिर उसने क्या किया, उरुर्व्याम का मतलब होता है बहुत ही तेज गति से भागा, बहुत, उसको सिर्फ एक था, जहां तक संभव है मैं भाग कर अपने प्राण बचा लूं। अश्वत्थामा पहले से ही मन में बहुत ज्यादा शंका थी उसको कि अब उसने अर्जुन के सारे पुत्रों को मारा है तो छोड़ेगा नहीं, उसे पता था इस क्रिया की अवश्य प्रतिक्रिया तो होगी, बच्चों की हत्या करने से वो हृदय के अंदर बहुत ज्यादा दुखी था। असल में अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, वो उस ऐसा खराब नहीं था, मतलब उस टाइम पर सिर्फ क्षणिक इमोशन में आकर दुर्योधन की बहुत ज्यादा दुर्दशा जो उसने देखी थी उसको देखकर उसने गलत काम उससे हो गया था। वास्तव में अश्वत्थामा इतना नीच व्यक्ति नहीं था, बड़ा अच्छा आदमी था, मतलब कभी भी ऐसी गलती वो करता नहीं, लेकिन उस टाइम पर वो इतना ज्यादा, जब दुर्योधन को देखा था ना कराते हुए, तो उसको ऐसा लगा कि दुर्योधन को मैं किसी तरह से संतुष्ट करूं, तो उसको संतुष्ट करने के लिए बस उससे ये गलती हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी कोई ऐसी व्यक्ति कर ऐसी गलती कर बैठता है, तो इसीलिए बोला भर्तु प्रियम कि मेरा दिल करता है मैं अपने स्वामी को किसी तरह से संतुष्ट करूं, तो उसका प्रिय हुआ नहीं, ये दूसरी बात है कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब किसी अच्छे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से जब कोई अपराध होता है तो उसको हृदय में ऐसा पश्चाताप हो रहा होता है कि मुझसे बहुत गलत काम हुआ, तो अश्वत्थामा भी उस समय जानता था कि मैंने बहुत गलत किया, वो शोक कर रहा था, दुखी था हृदय से, इसलिए उसका मुख मलिन था, वो उसका तेज घट गया था, मुख फीका हो गया था, लेकिन फिर भी उस समय जब उसने देखा क्या देखा? विलक्ष दूरा, दूर से ही देखा। तो फिर उसने क्या किया? वो भी अपने रथ पर सवार हो गया, पराद्रवत प्राण परीप्सु रव्याम, कि वो भी दौड़ने लगा। किस तरह? यहाँ पर इतना दौड़ा था, यानी कि अश्वत्थामा आगे और अर्जुन उसके पीछे, इतना दौड़ा था कि कैसे भी करके, ये ना कहना प्रकार है, मुझे अपनी जान की जान को बचाना है, कैसे भी करके बचाना है। तो वो कैसे भाग रहा था, उसका दृष्टांत देते हुए यहाँ पर सूत गोस्वामी दो बातें बता रहे हैं कि यावत गमम मतलब वैसे भागा, इतना तेज भाग रहा था वो, जिस प्रकार रुद्र भयाद्यथार्क, रुद्र भयाद यानी रुद्र, यानी रुद्र के भय से, शिव जी के भय से, यथा जिस प्रकार, का मतलब होता है यथार्क, का मतलब होता है ब्रह्मा, और अर्क का मतलब होता है सूर्य। अब ये दोनों जैसे ब्रह्मा और सूर्य एक बार शिव जी के भय से जिस तरह से भागे थे, उसी प्रकार से अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भाग रहा था। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जैसे शिव जी ने ब्रह्मा और सूर्य देव का वध नहीं किया, जैसे अभी यहाँ पर दृष्टांत श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि एक बार ब्रह्मा जी का मन मलिन हो गया, मतलब 2-3 मिनट के लिए बस उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो पुत्री थी उनकी ओर आकर्षित हो गए, लेकिन जब शिव जी ने देखा, शिव जी क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उन्होंने देखा कि ऐसा नालायक ब्रह्मा तो आज तक नहीं हुआ, ऐसा पतित ब्रह्मा, तो शिव जी अपना त्रिशूल निकाला, बोला ऐसे ब्रह्मा को तो मार डालना चाहिए जो अपनी पुत्री के ऊपर कुदृष्टि रखता है। तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए आगे बढ़े, शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा जी आगे भागे जा रहे हैं, शिव जी उनके पीछे भागते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने शिव जी से क्षमा मांगी और फिर शिव जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। मतलब ये केवल एक दृष्टांत है, भागवत में आता है, वास्तव में हमारे हमें सिखाने के लिए है कि माया किसी भी वक्त हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो जो अपोजिट सेक्स होता है, मतलब लड़कियों को लड़कों से, यानी कि हमेशा इस तरह से अकेले में नहीं मिलना चाहिए, तो किसी भी टाइम पर जब ब्रह्मा के ऊपर आक्रमण हो सकता है कामदेव का, तो हम तो फिर भी साधारण जीव हैं। तो केवल सिखाने के लिए हमें ये दृष्टांत दिया गया है। और अगर कोई ऐसा सोचता है, श्रील प्रभुपाद हमें आगे, मैंने सुना था एक दफा कथा में, कि अगर कोई किसी के मन में ऐसा आता भी है ना कि ब्रह्मा अपराधी है या फिर ब्रह्मा ने इतना अपराध किया, तो फिर उसी समय उसका नरक निश्चित हो जाता है। हम ब्रह्मा कोई साधारण जीव नहीं है, ब्रह्मा करोड़ों मतलब जन्मों तक, 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के बाद ब्रह्मा बनते हैं। 100 जन्मों तक जिसने कोई अपराध नहीं किया होता है, वर्णाश्रम धर्म का अच्छा अच्छा पालन किया होता है, तब कहीं जाकर वो ब्रह्मा जी बनते हैं। वास्तव में भगवान के जो ये पार्षद होते हैं ना, वो जो कार्य करते हैं वो केवल और केवल संसार को शिक्षा देने के लिए करते। तो हमारे मन में ऐसा खूब विचार नहीं आना चाहिए ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने ये अपराध किया ब्रह्मा, हमें केवल शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ये इसमें से मुझे शिक्षा मिल रही है। तो उस एक बार क्या हुआ कि विद्युत माली नाम का एक व्यक्ति था, उसने शिव जी की बहुत बहुत तपस्या की और बहुत ज्यादा तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको एक विमान दिया, बहुत ही सूर्य की तरह जो चमचमाता हुआ ज्योतिमय, वो उनको उसको विमान दिया। अब वो क्या करता था, जहां पर सूर्य अस्त हो जाता था वहां पर वो अपना विमान लेकर प्रकाशित कर देता, विमान ऊपर ऊपर उड़ता था। अब जिस जिस जगह पर सूर्य अस्त हो जाता था वहां पर आके वो इतना तेज उसकी विमान की लाइट थी, एकदम लगता था कि सूर्य, यानी जहां रात हो जाती थी वहां पर भी वो दिन बना देता था, दिन और रात का भेद जो है वो मिटा दिया था। तो सारे लोग और सारे देवता सूर्य देव के पास गए, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इतना डिस्टर्ब हो गए थे। अब देखो, दिन जितना जरूरी होता है ना, उससे ज्यादा जरूरी रात होती है, क्योंकि दिन में हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, सारा दिन जीव जो है वो अपने आप को काम में लगाता है, और रात्रि होती है तो वो शांति से रिलैक्स होके सोता है। अब खुद सोचो, रात ही नहीं होगी तो जीव कहाँ से संतुष्ट होगा? मतलब लोगों का जीना डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज्यादा, तो वो सब जीव और देवता भी गए उसके पास, है ना, सूर्य देव के पास, और बोला आप जब अस्त हो जाते हो तब हम पहले आराम करते थे, लेकिन अभी ये विद्युत माली का जो विमान है वो रात होने ही नहीं देता। तो सूर्य देव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उसने सोचा कि ऐसे कैसे कर सकता है, ये नियम है कि दिन के बाद रात होगी और ये उस नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो सूर्य देव ने अपनी तीखी किरणों से उसका विमान जलाकर खाक कर दिया। तो उसका विमान जल गया तब बना जब अभी, लेकिन उसने विमान तो जला दिया, लेकिन ये विचार नहीं किया कि इसको ये विमान दिया किसने, ये किस कंपनी का विमान है जिसको मैं जला रहा हूँ, तो ये कौन सी कंपनी थी? रुद्र कंपनी थी। अब रुद्र ने जिसको ये विमान दिया था वो गया जो माली था विद्युत माली, हाँ वो गया शिव जी के पास और कहा कि आपने जो मुझे विमान दिया था ना, सूर्य देव ने उसको जला दिया, मैंने कितनी तपस्या से, आप बोला आपका विमान इतना ज्यादा मतलब लो क्वालिटी का था जो इतना जल्दी जल गया। जब भी रुद्र ने, जब शिव जी ने ये सुना कि मेरे दिए हुए विमान को सूर्य देव ने जला दिया, फिर तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। शिव जी गए और है ना सूर्य देव के पीछे, और सूर्य देव आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और शिव जी उसके पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और एक जगह काशी वाराणसी में एक स्थान है जिसको लोलार्क कहते हैं। लोलार्क मतलब जहां पर अर्क गिर गया, अर्क यानी सूर्य देव जहां पर गिर गया था वहां पर गिर गया था। और फिर जब शिव जी आए उसको मारने के लिए तो शिव जी से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा सब लोग को डिस्टर्ब कर रहा था तो सब मुझे आए थे प्रार्थना करने के लिए, मुझे ये ख्याल नहीं आया कि आपका दिया हुआ, लेकिन आप भी तो सोच कर दिया करो ना, वरदान अगर किसी को देते हो सब ऐसा किसी को वरदान दो जिससे सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं देना। तो शिव जी को शांत किया उसने। बहरहाल वो इतना तेज भागा था, और इसी दृष्टांत को यहाँ पर बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि आज अश्वत्थामा भी अर्जुन के भय से इतना भाग रहा है जितना कि वो भाग सकता है। अब देखते हैं वो कितना दूर भाग सकता है गांडीव से, और कितना अपने आप को बचा सकता है। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।